ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सुबह के इस पावन वेला में कल आप सभी ने आत्मा की यथार्थता के बारे में जाना और आज के सुबह के सत्र में राजयोग का दूसरा भाग परमात्मा का दिव्य परिचय। क्योंकि हम सभी समय प्रति समय भगवान को याद करते हैं, लेकिन आज दुनिया के अंदर भी लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है, और आखिर भी ये सारे भगवान जो है उन सबका हेड कौन है। कुछ समय पहले एक बच्चे ने ये सवाल पूछा अपनी माँ से कि हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान हैं, तो इन सबका हेड कौन है। माँ जवाब नहीं दे पाई और कहा, नहीं ये सारे भगवान हैं। तो कहा, भगवान तो एक होना चाहिए, इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं। और इसीलिए जब भी वो माँ अपने बच्चे से कहती बेटा मंदिर चले, वो बच्चा मना कर देता है, यही कहते हुए कि मंदिर जाने के बाद आई गेट सो कंफ्यूज्ड कि मैं अपने मन को कहाँ एकाग्र करूं, और उसी कंफ्यूजन में मेरा टाइम बीत जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर जाने के बाद मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। वो माँ ने कहा कि ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे के जो मन के प्रश्न है उनका जवाब न दे पाने के कारण शायद वो नास्तिक बनता जा रहा है, कि भगवान में से उसकी आस्था ही खत्म हो रही है। ये शायद उस एक माँ का प्रॉब्लम नहीं है। आजकल के बच्चे इतने हाई आईक्यू वाले हैं, उनको हर बात में एक सेटिस्फैक्टरी आंसर चाहिए, और जब तक वो आंसर नहीं मिलता है तब तक वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, भगवान को भी याद करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए जिस तरह शारीरिक पिता एक है और हम सब अच्छे से उसको जानते हुए याद कर सकते हैं, तो जरूर है कि हम सब आत्माओं का पिता भी तो एक ही होगा, जिसको हम पारलौकिक पिता कहते हैं, परम पिता परमात्मा कहते हैं। तो वो परम पिता परमात्मा कौन है? वो परम आत्मा है। जिस तरह हम सभी आत्माएं हैं तो वो भी परम आत्मा है। तो परम आत्मा का स्वरूप भी हम आत्माओं जैसा ही होगा। जिस तरह शारीरिक पिता का स्वरूप हम लोगों जैसे ही है, तो लौकिक पिता और पारलौकिक पिता, ये दो पिता का अंतर हमें समझना है। एक बार हमने एक कार्टून देखा जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम्स आती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है। दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि। तीसरी कॉलम में लिखा था जितने भी इष्ट देवी देवताएं हैं सब परमात्मा है। चौथी कॉलम में लिखा था वो सर्वव्यापी है, कहां नहीं है, कण कण में भगवान है। जहां देखूं वहां तू ही तू है। पांचवी कॉलम में लिखा था वो ब्रह्म है, ब्रह्म ही ईश्वर है। छठी कॉलम में लिखा था वह नाम रूप से न्यारा है, न नाम है न रूप है, न आकार है, निराकार है। और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी कॉलम्स पढ़ने के बाद उसने क्या डिसीशन लिया होगा, हु इज गॉड, आखिर ईश्वर कौन है इन सब में? कंफ्यूजिंग नहीं है? और इसलिए जब इतना कंफ्यूजन ईश्वर के बारे में हो जाए तो यह सिद्ध करता है कि उसके विषय में हमें अज्ञानता ही है, हम नहीं जानते हैं। तो ईश्वर को परखने की कोई कसौटी? जिस तरह एक जवेरी परखता है भाई सोना कितना कैरेट का है और फिर उसकी कीमत वैल्यू बताता है, ठीक इसी तरह इतनी सारी जो मत मतांतर है ईश्वर को लेकर के, उसमें सत्य क्या? और जबकि ये कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ, सत्य है, तो सत्य तो एक होना चाहिए। 10 बातें हमारे सामने हो और हम कहें सभी सत्य है, पॉसिबल? सत्य एक होता है। 2 बातें भी है तो भी कहेंगे एक सत्य है एक झूठ है। तो ईश्वर के बारे में इतने सारी मतें क्या प्रत्यक्ष करती है कि मनुष्य में कितनी अज्ञानता समाई हुई है ईश्वर को लेकर के। और इसलिए आज मनुष्य दर दर भटक रहा है, कहीं से वो सत्य प्राप्त हो जाए। तो ईश्वर को परखने की कसौटी 5 बातें हैं। सबसे पहली बात, ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे, उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, गॉड इज वन, वो एक है और वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो By all the religions of the world, उसको सत्य कहेंगे। दूसरा, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक है, उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता, उसका कोई गुरु नहीं हो सकता, वो सर्व का सदगुरु है। तो हाईएस्ट ऑन हाई अथॉरिटी, सर्वोच्च शक्ति। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व परे हो, अर्थात मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र। अब जिसने जन्म लिया उसने देह प्राप्त किया, तो देह है तो देह के संबंध है, तो देह और देह के संबंधों के चक्र में हम आते, वो नहीं आता है। जिसने देह धारण किया उसने कर्म किया, और कर्म किया तो फल मिला, तो कर्म और कर्म के फल के चक्र में हम आते हैं, वो अकर्ता भोक्ता है। जिसने कर्म किया या तो वो कर्म पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, तो पाप और पुण्य के चक्र में भी हम आते हैं, वो उससे भी परे हैं। और पाप और पुण्य के फल स्वरूप या सुख मिला या दुख मिला, तो सुख दुख के चक्र में भी हम आते हैं, वो तो उससे भी परे हैं। इसीलिए तो उसको हरि कहा, जो दुख हर के सुख देने वाला। तो ये सभी संसार के चक्रों से जो पर है उसको कहेंगे परमात्मा। चौथी बात, परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी ज्ञाता है, सब कुछ जानता है, त्रिकालदर्शी तीनों कालों को जानता है, त्रिलोकी नाथ है जो तीनों लोकों का नाथ है, त्रिनेत्री है जो मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु देने वाला है। तो ये तीन की महिमा भी उसके साथ ही लगती है। सर्वज्ञ माना जो त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, उसको कहेंगे परमेश्वर। और पांचवी बात, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत है, इन्फिनिट इन हिज क्वालिटीज। तो ये पांच बातें हैं कसौटी, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वपरे, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत। अब ये पांचों बातें किसके साथ लगती है? अगर एक एक मत को उठाकर देखे तो क्या उनके साथ ये पांचों बातें जाती है? जब हम कहते हैं नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है, तो क्या प्रकृति के साथ ये पांचों बातें लगेगी? क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? करेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? हाँ, नहीं करेंगे। प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा, वो चित्रकार कौन है? तो माना चित्र और चित्रकार अलग है, प्रकृति उस चित्रकार का चित्र है। तो प्रकृति को परमेश्वर कहना ये अज्ञानता है, अज्ञानता से कह दिया ना। तो पहली बात तो क्लियर हो गई, प्रकृति परमेश्वर नहीं है। दूसरी बात, जब हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि, क्या उसके साथ ये पांचों बातें लगेगी? क्या सभी धर्म वाले आत्मा को परमात्मा के रूप में स्वीकार करेंगे? करेंगे? नहीं। क्या आत्मा को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? कहेंगे? नहीं कहेंगे। अगर कहते थे तो फिर हमें मंदिर में जाकर ये गाने की जरूरत नहीं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, यही कहा ना। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर हमने किसको कहा तुम मात पिता? कितना कंफ्यूजन है, कॉन्ट्रेडिक्शन है अज्ञानता के कारण। तो इसीलिए कहा कि आज मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा टाइटल उसको मिलता है। किसी ने पुण्य का काम किया तो कहेंगे पुण्यात्मा है, किसी ने महान काम किया तो कहेंगे महात्मा है, किसी ने धर्म का काम किया तो कहेंगे धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया तो कहेंगे देवात्मा है। तो पुण्यात्मय अनेक है, महात्मय अनेक है, धर्मात्मय अनेक है, देवात्मय अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। तो ये सब आत्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। पुण्य परमात्मा नहीं कहा, पुण्य आत्मा कहा, महान आत्मा कहा, मान परमात्मा नहीं कहा, देव आत्मा कहा, देव परमात्मा भी नहीं कहा। ये सब आत्माएं हैं, परमात्मा एक है। तो दूसरी बात, आत्मा सो परमात्मा कहना ये भी अज्ञान है, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस जो हमने कह दिया। तीसरी बात, जब हम कहते हैं कि ब्रह्म ईश्वर है, ये कहां तक सत्य है? अगर ब्रह्म ईश्वर होता तो हमने ये क्यों गाया, पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, ये कहते हैं ना। अज्ञानता के कारण हम दो दो बातें करते रहे, जो भी सही हो, है ना। तो एक तरफ ब्रह्म ईश्वर कहा, दूसरी ओर कहा पार ब्रह्म परमेश्वर। अब आपका विवेक किसको सत्य कहता है, ब्रह्म ही ईश्वर को सत्य कहेगा या पार ब्रह्म परमेश्वर को सत्य कहेंगे? पार ब्रह्म को परमेश्वर सत्य कहेंगे। तो तीसरी बात भी, ब्रह्म ही ईश्वर है कहना अज्ञान है, अज्ञानता से कह दिया। चौथी बात, जब हम कहते कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सब में ईश्वर है, यह कहां तक सत्य है? अगर सब में परमात्मा है तो फिर आज एक मनुष्य दूसरे का खून करता है तो इसको क्या कहेंगे? ये कर्म किसका है, आत्मा का या परमात्मा का? आत्मा का। तो उस वक्त अंदर बैठा परमात्मा क्या कर रहा था? अगर परमात्मा सब में है तो क्या परमात्मा के पास इतनी शक्ति नहीं जो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? क्या इतनी भी पावर नहीं है? सुप्रीम अथॉरिटी। आज घर में आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे अगर खेल रहे हैं और खेल खेल में किसी बात को लेकर के झगड़ा करने लग गए, आप सामने बैठे हैं, देखते रहेंगे कि उसका कर्म वो जाने या छुड़ाएंगे? छुड़ाएंगे ना। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है, हम सबके अंदर है, और मनुष्य इतना गलत काम कर रहा है, तो क्या उसको रोकने की ताकत भगवान में नहीं है? इतना निर्बल है जो सर्वशक्तिमान, क्या उसके पास इतनी भी शक्ति नहीं? क्या आज मनुष्य को गलत काम करते हुए रोक सके? दूसरी बात, श्रीमद् भगवद गीता में जब कहा यदा यदा ही धर्मस्य, इसको तो मानते, भावार्थ है जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब तब अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं आता हूं। अगर वो यही है तो गीता के ये महावाक्य ही गलत है। अगर वो यही है तो कौन आएगा? अगर वो यही है तो उसके होते इतना अधर्म कैसे? फिर कौन आएगा जो अधर्म का नाश करेगा? अनेक सवाल खड़े हो जाते हैं। आज जब आपको कोई बात पूछते हैं और आपको मालूम नहीं होता है तो आप क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो, कहते हैं ना। गलती से भी कभी कहा नीचे वाला जाने, हु इज दिस ऊपर वाला? ऊपर वाला कौन है? और वो कैसा है पता ही नहीं है। तब फिर कई बार कई लोग कहते हैं कि सर्वव्यापी की बात भी तो शास्त्रों में ही लिखी है, क्या शास्त्र गलत है? शास्त्र गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन शायद शास्त्र की बातों को समझने में हमने तो गलती की है। तो भाव क्या है? आज अगर आपका बच्चा विदेश चला जाए पढ़ने के लिए और वहां से वो फोन करे और आपसे कहे, पूछे, आप मुझे याद करते हो, आप क्या कहेंगे? अरे बेटा, तू तो हमारे दिल में समाया हुआ है, तुझे भूलते ही कब है? कहते हैं दिल में समाया माना फिजिकली दिल में समाने की बात तो नहीं है ना, भावार्थ उसकी याद दिल में समाई है। ठीक इसी तरह ईश्वर सर्वव्यापी माना ये भाव है, फिजिकली वो प्रेजेंट है ऐसा नहीं है, उसकी याद समाई हुई है, हर कोई उसको याद कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली वो प्रेजेंट है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आज एक छोटा बच्चा जब घुटना करना सीखता है, घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है, जब लोगों को देखता है बाहर जा रहे, उसको लगता है मैं भी जाऊं, है ना? अब मां को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कहीं दरवाजे से बाहर ना निकल जाए, तो क्या करेंगे उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाएंगे, बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहेंगे देख बाहर गया ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा। वो बच्चा घुटना करते हुए दरवाजे तक आता है, वो कुत्ता और गाय को देखकर क्या करेगा? वापस अंदर आ जाता है और बड़ा खुश होता है, आई एम सेफ, मैं बाहर नहीं गया, व्यक्त करता है। लेकिन वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 5-10 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, हंसेगा अपनी मां पर, मेरी मां भी कैसी है, इतना भी नहीं समझती है, कुत्ता कोई ले जाने वाला थोड़ी है, और हंसते हुए निकल जाता है बाहर खेलने के लिए, और बाहर जाकर कुत्ते के बच्चे को घर के अंदर लाएगा, कहेगा लो मैं ही लेके आया, वो क्या मुझे ले जाएगा, कहेगा कि नहीं? ठीक इसी तरह शास्त्र में जो कहा गया कि ईश्वर सर्वव्यापी है, इसके पीछे का भाव यही है कि मनुष्य इतना पाप कर्म करने लगे तो कई ऋषि मुनियों ने सोचा कि मनुष्य को पाप कर्म से बचाएं कैसे, तब उन्होंने कह दिया कि हे मानव, जब तुम पाप करता है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है, कोई मनुष्य देखे या ना देखे वो तो देख रहा है, ताकि मनुष्य को एक डर बैठे कि पाप कर्म न करे। जिस तरह वो बच्चा बाहर न जाए मां ने एक डर बिठाया, लेकिन समझदार होने के बाद वो डर रहा। आज दुनिया में भी मनुष्य बड़ा हो गया, विज्ञान के युग में समझदार हो गया, और इसीलिए कोई अगर उसको कहता भी है कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा है, वो देख रहा है, तो क्या कहता है आज का मनुष्य? वो देखता क्यों है, छुड़ाए ना, वो तो सर्वशक्तिमान है, मुझे छुड़ाए, वो देखता क्यों है? वो डर भी नहीं रहा जो डर शास्त्रों में बिठाने का प्रयत्न किया गया। आज मनुष्य इतना समझदार हो गया जो वो डर भी नहीं रहा। आज से 50 साल पहले भी लोग पाप करने से डरते थे, भगवान देख रहा है, लेकिन आज डर है? कोई डर नहीं है, और इसीलिए इतना अधर्म बढ़ता गया। इतना मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता गया क्योंकि वो डर भी नहीं था। तो ईश्वर सर्वव्यापी है, ये भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं। इसीलिए ये भाव रख करके चलना तो हर बुरे कार्य से सेफ रहेंगे। उसकी याद दिल में समा के रखो, कोई गलत काम नहीं होगा। इसी भाव से ये बात शास्त्र में कही गई थी। तो क्या कहेंगे, सर्वव्यापकता की बात भी अज्ञान है? जब उसको ऊपर वाला कहा तो वो ऊपर वाला कौन है? तब जो कहा कि जितने भी इष्ट देवी देवताएं हैं सब परमात्मा के रूप है, चौथी बात, क्या ये सत्य है? कहां तक सत्य है? आज जितने भी देवी देवताओं को देखो, सबने पूजा की है। श्री राम ने भी रामेश्वरम में पूजा की शिव की, श्री कृष्ण के तो आराध्य शिव रहे। जितनी भी देवियां हैं उन देवियों को कहा जाता है शिव शक्तियां, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं। तो सब देवों का भी देव कौन है? महादेव। अब सब देवों का भी देव महादेव हो तो क्या उनके साथ वो पांचों बातें लगती है? देखना पड़ेगा कि क्या उनके साथ लगती है, क्योंकि सभी देवी देवताओं ने भी उस निराकार को ही याद किया, तपस्या की, आराध्य उनके रहे। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती जरूर करता है, शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेता है। जहां दोनों का नाम अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों का स्वरूप अलग है, आइडेंटिटी अलग है, एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष। जहां दोनों का ऑक्यूपेशन अलग है, शिव को कहा भोलेनाथ और शंकर को कहा, तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय हो जाती है। तो एक भोलानाथ है, एक प्रलयनाथ है। नाम अलग, आइडेंटिटी अलग, कार्य अलग, फिर एक कैसे हो गया? देव देव महादेव कहा। शंकर को भी ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। किसका ध्यान करते हैं? शंकर से श्रेष्ठ कौन था? देवों का देव महादेव ही था। इसीलिए शंकर को कैलाश पर्वत पर दिखाया ध्यान करते हुए। कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े ते बड़ा शिवलिंग, सबसे बड़े ते बड़ा शिवलिंग। वहां बैठकर शंकर ने भी किसका ध्यान किया? शिव का ध्यान किया। तो इसीलिए शिव को कहा जाता है कल्याणकारी, गुणवाचक नाम भी है। शिव माना जो सदा कल्याण करने वाला, इसलिए कहते सदा शिव। शिव माना ज्योतिर्लिंगम, जो ज्योति की आकृति है। लिंग माना आकृति, जो ज्योति की आकृति। ज्योति की पूजा कैसे करें, इसलिए भारतवासियों ने एक आकृति दे दी जिस पर अपनी भावनाओं को अर्पित करते हैं, और इसीलिए उसको महादेव कहा। भारत में आज भी द्वादश ज्योतिर्लिंगम है, जो आज भी महान तीर्थ स्थान माने जाते हैं। नॉर्थ से लेकर के साउथ तक नॉर्थ में जाओ अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, तो साउथ में जाओ रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है, ईस्ट में जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, तो वेस्ट में जाओ सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। तो भारत के अंदर कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर ना हो। देवताओं की पूजा फिर भी स्टेट वाइज हो गई। नॉर्थ में जाएंगे श्री राम कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में चले जाओ तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी, तो ईस्ट में चले जाओ कलकत्ता तरफ काली पूजा मिलेगी, दुर्गा पूजा मिलेगी, तो वेस्ट में चले जाओ तो गणेश पूजा गुजरात महाराष्ट्र में मिलेगी, तमिलनाडु में जाओ तो मुर्गन की पूजा मिलेगी, राजस्थान में जाओ तो रामदेवरा जी की पूजा मिलेगी, खाटू श्याम जी की पूजा मिलेगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा भारत भर में। तब कहा कि भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां शिव का मंदिर न हो। और इसलिए जो नाम भी दिए हैं वो नाम का एंडिंग भी यह ईश्वर या नाथ में होता है। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलेनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ या ईश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ये सारे शिव के मंदिर। जो सर्व का नाथ और सर्व का ईश्वर है वो एक ही है। ये तो हुई भारत वालों की बात। भारत से बाहर जाओ, इस्लाम धर्म में जाओ, मूर्ति पूजा नहीं है, परंतु जब मक्का हज पर जाते हैं वहां काबा का पवित्र पत्थर है, जिसके लिए कहा गया है कि जब इस्लाम धर्म में भी ईश्वर के नाम को लेकर झगड़ा हुआ तो उस समय एक आकाशवाणी हुई और ऊपर से ये पत्थर गिरा जिसको कहा काबा का पवित्र पत्थर। और इसीलिए जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। इसलिए मोहम्मद पैगंबर साहब ने उसकी स्थापना की मक्का में, और तब से लेकर के ये कहा। लेकिन हज यात्रा पर भी हर कोई नहीं जा सकता है, ये पवित्र पत्थर का दर्शन करने के लिए भी काफी नियम है कि कौन जा सकता है। और वहां जाने के बाद क्या करते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। एक पिल्लर है जिसको शैतान कहते हैं, वो शैतान को पत्थर मारते हैं और इस पवित्र पत्थर को जाकर चूमते हैं और अंत में अपनी बंदगी करते हैं। और उस बंदगी में कहते हैं, हे परवरदिगार, परमेश्वर के लिए कहा, हे परवरदिगार, नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, कबूल हो, कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है। नूर माना रोशनी, तेज। ज्योति माना, जिसको हमने ज्योतिर्लिंगम कहा, तो ज्योति माना भी तेज, नूर माना भी तेज, बात एक ही है या अलग है? और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में, जीसस ने कभी नहीं कहा आई एम गॉड, उसने यही कहा हमेशा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। इसलिए आज भी अगर वेटिकन सिटी में जाओ तो वेटिकन सिटी के अंदर जो कैथेड्रल है उसके अंदर किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं है, लाइट का सिंबल रखा हुआ है। आप गूगल सर्च करके भी देख लीजिए कि वेटिकन सिटी के अंदर आपको लाइट का सिंबल मिलेगा, गॉड इज लाइट, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाओ, गुरु नानक देव ने कहा, एक ओमकार, निराकार, निर्वैर, सतनाम, अकाल मूरत, अजोनी। इतनी सुंदर तरीके से महिमा गाई है और अंत में ये सारी महिमा करते हुए कहा, एक नूर, एक नूर। और इसीलिए उस एक नूर को ही वो ईश्वर कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी इसीलिए शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए तो पारसी धर्म में, पारसी धर्म के अंदर कहा जाता है कि पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर आए थे। आज भी उनके मंदिर को कहा जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है, अखंड ज्योति स्वरूप। और आगे जाए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाए, लेकिन 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? महावीर स्वामी ने कभी यह नहीं कहा मैं भगवान हूं। 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में दिखाए हैं। किसका ध्यान करते हैं? तो कहा सिद्धशिला, सिद्धशिलापति, अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ है, जो निराकार है। और आगे जाए बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को भी ध्यान मुद्रा में दिखाए हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। आज भी अगर जापान चले जाओ, 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, जिसको कहा जाता है चिंकुन शेकी। चिंकुन शेकी का मतलब है जो शांति का दाता है। उसके सामने बैठकर ध्यान करते हैं और समझते हैं ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है, इसीलिए वो उनका ध्यान करते हैं। तो सर्वधर्म मान्य कौन है? जिसको सभी ने ईश्वर के रूप में स्वीकार किया वो कौन है? एक ही तो है, जिसको निराकार कहा, ज्योति कहा, लाइट कहा, नूर कहा, गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा। साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कभी अपने को भगवान नहीं कहा। फिर भी उसकी न मान करके हम उसकी पूजा कर रहे हैं भगवान के रूप में, जब वो खुद कह रहे हैं सबका मालिक एक है, जब ये सभी देवी देवताओं ने भी उसकी पूजा करके दिखाई, जब ये सारे धर्म एक बात कह रहे हैं, तो हम लोग रास्ता भूले कहां से? हम लोग रास्ता कहां से भूल गए जो आज धर्म के नाम पर इतने झगड़े हो रहे? जब एक ही बात कह रहे हैं तो फिर झगड़ा क्यों है? इसलिए कहा सर्व धर्म मान्य एक है, वही सर्वोच्च शक्ति है, देवों का देव, महादेव। तो सर्वोच्च शक्ति है, उसी के सामने तो ये गाया, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम सर्वम मम देव देव। जो सभी देवी देवताओं का, सभी का, देवों का देव वही है। जब इतना क्लियर कट हमने प्रार्थना भी गाई, श्लोक भी गाए, फिर भी रास्ता भूल गए। तीसरी बात, जो सभी चक्र से पर है, शिव का जन्म किस रूप में हुआ? अजन्मा है। ज्योति का जन्म नहीं होता है, ज्योति स्वयंभू है। इसीलिए शिव के साथ शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का मतलब है स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुए, जिसको उत्पन्न करने वाले कोई माता पिता नहीं है। शिव का कोई माता पिता है? कोई शास्त्रों में आया? नहीं आया। तो न जन्म है न मृत्यु है, न देह है न देह के संबंध है। जब देह ही नहीं है तो न कर्म है न फल है, अकर्ता भोक्ता। इसलिए उसकी महिमा में कहा अजन्मा, अकाल मूरत। देह नहीं है इसलिए कहा अव्यक्त, जिसको ये व्यक्त चोला नहीं है, अव्यक्त। अकर्ता भोक्ता, न कर्म करते न फल भोगते। और जब न कर्म है न फल है तो न पाप है न पुण्य है। और जब पाप और पुण्य ही नहीं है तो न सुख है न दुख है। इसीलिए उसको हरि कहा कि सबके दुख को हरने वाला, सुख देने वाला वो पिता है। पिता ही हमेशा बच्चों को सुख देता है, उनके दुख को हर लेता है। तो सर्व परे, ये भी उसके साथ ही मैच होती है। चौथी बात जो कहा, तीन की महिमा। इसलिए आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है, और तीन लकीर यानी जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाला। वो तीन लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु देने वाला, त्रिनेत्री। तो त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री। साथ ही उनकी पूजा में तीन पत्र का बैल पत्र चढ़ता है, जो डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होने चाहिए। अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, त्रिमूर्ति है। इसलिए कहा जीओडी गॉड, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, है ना। त्रिमूर्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। क्यों? क्योंकि खुद करता नहीं है लेकिन करावनहार जरूर है। तो ब्रह्मा द्वारा सृजन का कार्य, विष्णु द्वारा पालना का कार्य, और शंकर द्वारा महाविनाश का कार्य कराने वाला वो मालिक है। इसलिए उसको मालिक कहा कि मालिक कराने वाला खुद करता नहीं है, अकर्ता भोक्ता। तो तीन मूर्तियों के द्वारा कराते, इसलिए ये तीन मूर्तियों का गायन भी हर धर्म में मिलेगा। हिंदू धर्म में जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा, इस्लाम धर्म में उसको जिब्राइल मिकाइल इसराफिल कहते हैं। जिब्राइल माना जो सबक देने वाला, ज्ञान देने वाला, ज्ञान से ही सृजन होता है। फिर मिकाइल माना जो रोजी रोटी देने वाला, अर्थात पालना करने वाला। और इसराफिल माना जो कयामत लाने वाला। इस्लाम धर्म में भी ये तीन का गायन मिलेगा। तो क्रिश्चियन धर्म में कहा द थ्री होली एंजल्स या थ्री होली गोस्ट, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर. तो गुरु नानक देव ने कहा एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान. तो ये तीन का गायन, एक संसारी है, एक भंडारी जो भंडार भरने वाला, जो पालना करता है, और एक लाए दीवान. तो हर धर्म में भी आपको ये तीन का गायन मिलेगा. तो परमात्मा करण करावनहार ने ये तीन मूर्तियों को उत्पन्न किया, इसलिए इन तीनों का भी जन्म नहीं है. ब्रह्मा कहां से आया? तो कहा विष्णु की नाभि कमल से. अच्छा, विष्णु कहां से आया? तो ब्रह्मा की नाभि कमल से. अब दोनों एक दूसरे की नाभि कमल से कैसे निकलेगा? सोचने की बात है. तभी तो कहा जाता ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, वन आफ्टर दी अदर. कि ब्रह्मा सृजन का कार्य करते हैं, विष्णु पालना का कार्य करता है, और शंकर निर्वस्त्र दिखाया, जिसने इस संसार के वस्त्र को पहना नहीं, ऊपर से कार्य किया. ये दोनों को वस्त्र दिखाए, ब्रह्मा को भी वस्त्र दिखाए, विष्णु को भी वस्त्र दिखाए, लेकिन शंकर को निर्वस्त्रधारी दिखाए, जिसने इस साकार दुनिया के वस्त्र को पहना नहीं है, लेकिन फिर भी कार्य किया. तो ये तीन मूर्तियों के द्वारा ही परमात्मा ने अपना कार्य कराया, है ना. इसलिए ये तीनों की उत्पत्ति है. और तीनों की उत्पत्ति कहां से दिखाई शास्त्र में? कहां से दिखाते हैं? कि तीनों की उत्पत्ति प्रकाश से हुई, लाइट से हुई, या ओम से हुई. इसलिए अनादि अक्षर ओम, ओम से तीनों की उत्पत्ति होती है. तो परमात्मा को एक ओमकार निराकार लाइट स्वरूप है, वहां से तीनों की उत्पत्ति हुई. बाकी तो सबका जन्म दिखाया, श्री कृष्ण का भी जन्म दिखाया, श्री राम का भी जन्म, सभी का जन्म दिखाया, खाली ये तीन देवताओं का जन्म नहीं दिखाते. तो देव देव महादेव, ये तीनों देवताओं के भी महादेव कौन है? शिव परमात्मा है. तो चौथी बात, ये तीन की महिमा भी उसी के साथ लगती है. त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति शिव, है ना. त्रिदेव कहा, शिव को हमेशा क्या कहते? त्रिदेव स्वरूप. और पांचवा, सर्व गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है. उसके जितने भी मंदिरों के नाम है, गुणवाचक कर्तव्यवाचक है ना. अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलेनाथ, है ना. बबुलनाथ जो कांटों को फूल बना, मनुष्य जो कांटे समान हो गए कलयुग के अंत में, उसको फूलों के समान बनाने वाला वही है. भोलेनाथ भी वही है ना. एक ओंकारेश्वर भी वही है. सभी जो नाम है वो गुणवाचक कर्तव्यवाचक ही है. तो सर्व गुणों में अनंत है. तो परमात्मा का ये दिव्य परिचय, अज्ञानता दूर हुई या नहीं हुई? हुई. क्या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? तो परमात्मा कौन? अगर कल को अगर आपका बच्चा आपसे पूछे ये सभी भगवानों का हेड कौन है, कौन है? सदाशिव. तो कम से कम उसके अंदर भी अज्ञानता को दूर कर सके, आप अपने स्टूडेंट्स के अज्ञानता को भी दूर करके उनको सही मार्गदर्शन दे सके। तो इसलिए उस पिता को समझना जानना भी आवश्यक है। जिसने भगवान को परमात्मा को यथार्थ रीति समझ लिया तो वही उसको पा सकता है, नहीं तो भटकते रहते, इसको माने इसको माने इसको माने इसको माने, किसको माने, है ना। तो अब थोड़ी देर के लिए हम सभी परमात्मा की स्मृति में बैठेंगे और परमात्मा की स्मृति में बैठकर उस परमात्मा को याद करेंगे। लेकिन याद कैसे करना है, तो कल आपको आत्मा का परिचय मिला, स्वयं को आत्म स्वरूप में देखना और उस परमात्मा को याद करना, क्योंकि जो जैसा है वैसे उसकी याद उसको आएगी। एक बच्चा है, जब अपने को बच्चा समझता है तो किसकी याद आती है, माता पिता की याद आएगी। जब अपने को दोस्त समझेगा तो किसकी याद आएगी, दोस्तों की याद आएगी। जब खुद को पति समझता है तो कौन याद आएगा, पत्नी की याद आएगी। जब खुद को पिता समझता है तो कौन याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। तो खुद को आत्मा समझेंगे तो कौन याद आएगा, परमात्मा। सिंपल एज दैट। आज तक हमारी शिकायत थी कि भगवान की याद हमें आती नहीं है। क्यों नहीं आती है, क्यों नहीं आती है, क्योंकि हम देह समझ करके उसको याद करने का प्रयत्न, तो देह समझा तो देहधारियों की याद आएगी ना। परमात्मा को याद करने के लिए तो स्वयं को आत्मा समझना जरूरी है। इसलिए गीता में भी कहा, हे अर्जुन आत्मभावस्थ, स्वयं को आत्मभाव में स्थित करो, तब तुम मुझे भी प्राप्त कर सकोगे, तब परमात्मा का अनुभव कर सकोगे। तो अंतर चक्षु से स्वयं को आत्मा देखो, एक प्रकाश पुंज के रूप में ब्रुकुटी के मध्य बैठा हुआ, और परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान है। तो ये प्रकाश को उस प्रकाश के क्या सानिध्य में ले जाकर के उसकी शक्ति का अनुभव करो। मांगने की जरूरत नहीं है, बाहर खड़े रहो। सूर्य से कभी मांगते नहीं हो कि सूर्य तेरी गर्माइश मुझे दे, मांगते है? खड़े रहो, उसके कांटेक्ट में आए, अपने आप थोड़ी देर में गर्माइश भर जाएगी। नदी के पास खड़े होकर नदी से कहना नहीं पड़ता है कि हे नदी तेरी शीतलता मुझे दे, खड़े रहो उसके कांटेक्ट में आओ, मिलेगी। परमात्मा से भी मांगने की जरूरत नहीं है, स्वयं को आत्मनिश्चय करके उस परमात्मा को प्रेम से याद करो, सर्व संबंधों से याद करो। वही माता पिता है, बंधु है, सखा है, गुरु है, शिक्षक है, और उस परमात्मा की किरणों को अपने अंदर समाने का अनुभव करो। चले तो स्वस्थ होकर के बैठेंगे, पीठ सीधी हो एकदम। एक निवेदन जरूर रहेगा, बीच में से कोई उठेगा नहीं। आपका अगर योग न लगता हो, आप सबको डिस्टर्ब न करें, जिसको उठना है पहले से ही उठ जाए। तो हम सब एकाग्रता के साथ उस परमात्मा का अनुभव करेंगे, और जैसे मैं आपको विचार देती जाऊं, उन विचारों को रिपीट नहीं करना, उसके भाव में अपने आप को ले जाना। तो कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं, अंतरचक्षु से स्वयं को देखो, ब्रुकुटी के मध्य में मैं प्रकाश पुंज आत्मा हूं। महसूस करो, स्वयं को प्रकाश के प्रभा मंडल में मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र हूं। निर्मल हूं। मेरा मन स्वच्छ भावों से भरा हुआ है। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूं। मेरा गुणधर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप। चारों ओर शांति के प्रकंपन को महसूस कर रही हूं। कितनी शांति है। इसी शांति में सुकून समाया हुआ है। इसी शांति में शक्ति है। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को ले चलते हैं ईश्वर के सानिध्य में। पंच तत्व की दुनिया से दूर सूर्य चंद्र तारा गण से भी पार परम धाम में, जहां मैं आत्मा प्रकाश पुंज के रूप में और मेरे पिता परमात्मा अनंत प्रकाशमान है, दिव्य तेजोमय स्वरूप है। कितना दिव्य अलौकिक रूप है। मैं अपने पिता परमात्मा के सन्मुख हूं। मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा से सर्वशक्तियों की दिव्य रश्मियां मुझ में समा रही है। परमात्मा शक्ति की ऊर्जा से मैं आत्मा सशक्त बन रही हूं। परमात्मा के दिव्य तेज को मैं स्वयं में समा रही हूं और इस दिव्य तेज से मैं आत्मा शुद्ध स्वच्छ बनती जा रही हूं। परमात्मा के दिव्य तेज से मैं आत्मा पावन होती जा रही हूं। कितना सुंदर अनुभव है जैसे कि मैं आत्मा एकदम हल्की हूं, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। परमात्मा सानिध्य में परम सुख की अनुभूति हो रही है, परम आनंद का अनुभव कर रही हूं। आत्मा और परमात्मा के इस दिव्य मिलन का अतीन्द्रिय सुख महसूस कर रही हूं। धीरे धीरे मैं आत्मा वापस इस पंच तत्व में प्रकृति के मध्य में स्वयं को देख रही हूं। मैं आत्मा शरीर की कर्मेंद्रिय की मालिक हूं। और इस हल्केपन का अनुभव मैं सारा दिन रहना है। ओम शांति।